बात।
तो ये जिस स्थान पे हम आए हैं ये गंधमाधन पर्वत की एक श्रेणी है।
कौन सा?
हाँ। तो भगवान श्री राम के अपने धाम साकेत पहुंचने के बाद जब भगवान यहाँ से अपनी लीला संवरण करके साकेत की ओर प्रस्थान किए तब से श्री हनुमान जी यहाँ पर विराजमान है गंधमाधन में। और यहाँ पर उनको कुछ युद्ध नहीं करना, कोई पर्वत नहीं उठाने, इसलिए आप देखोगे उन्होंने हाथ में गदा नहीं उठा रखी ना ही पहाड़ उठा रखे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? कीर्तन कर रहे हैं, निरंतर भगवान के सुंदर नामों का कीर्तन करते हैं। क्या कीर्तन करते हैं? हनुमान जी श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम पतित पावन सीताराम। तो निरंतर हनुमान जी कीर्तन करते रहते हैं, इसलिए हम भी उनके पार्टी गए हैं। हमारा भी यही प्रोग्राम है, इस्कॉन के भक्तों का भी यही प्रोग्राम है। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन। तो यहाँ पर ये हनुमान जी की सेवा है। तो यही वो स्थान है जहाँ पर हमने महाभारत में सीरियल में भी देखा है, पढ़ा है, सुना है कि जब हनुमान भीम जी सामान इकट्ठा करने के लिए जा रहे थे भोजन का, तो रास्ते में एक वानर मिला उनको जिसकी पूंछ इतनी लंबी थी कि पूरा रास्ता उसे ढका हुआ था। सुना है सबने? तो भीम ने उनकी पूंछ को फांदा नहीं। क्यों भाई? पूंछ रखिए, निकल के चले जाओ। हाँ हाँ, जो वैष्णव सिद्धांत है, भीम वैष्णव है। वैष्णव सिद्धांत क्या है कि किसी भी जीव का अपमान मत करो। जब आप किसी के ऊपर से टापते हो तो क्या होता है, आप एक प्रकार से उसका अपमान करते हो, उसको अपने से छोटा समझते हो, तभी उसके ऊपर से टापते हो। अपने से बड़े के ऊपर से थोड़ा कोई टापेगा। तो इस संसार में हर व्यक्ति को भगवान का दास, भगवान का अंश देख के पूरा हर जीव को, चाहे जानवर हो मनुष्य हो, सबको पूर्ण आदर दिया जाना चाहिए। तो ये भीम जो है अपने चरित्र से दिखा रहे हैं। और जब हमसे कोई वरिष्ठ होते हैं, जैसे सीनियर वैष्णव होते हैं, गुरु होते हैं, तुलसी महारानी होती हैं, तो इनके ऊपर जब लाइट जलती है एक तरफ से तो, या धूप में होते हैं तो दूसरी तरफ इनकी परछाई पड़ती है, तो वैष्णव जन उनकी परछाई पे भी चरण ना पड़ जाए, इससे सावधानी बरतते हैं। क्योंकि ये भी क्या है, एक प्रकार से मर्यादा का उल्लंघन है। हम मर्यादा में रहें तो सम्मान करेंगे सबका। हम यदि परछाई पे भी पैर रखते हैं गुरु की, वरिष्ठ वैष्णवों की और तुलसी महारानी की, तो एक प्रकार से हम उनके प्रति अपराध करते हैं। तो भीम जी जो है उस पूरे उस सिद्धांत का पालन कर रहे थे, एक बंदर की पूंछ के ऊपर से भी नहीं कूदना चाहते थे। तब वो जब हनुमान जी ने बोला मेरी पूंछ हटा दो, तब क्योंकि हनुमान जी उनको ये दिखाना चाहते थे, भीम क्या करते थे जब घर से निकलते थे उनको ढूंढना मुश्किल काम नहीं था। क्यों? जिस रास्ते पे वो जाएंगे वहां के रास्ते पेड़ उखाड़ देंगे, पत्थर तोड़ देंगे, मतलब उतनी शक्ति है, कुछ तो करना है ना उसके साथ, तोड़ फोड़ मचाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हनुमान जी उनको दिखाना चाहते थे कि आपसे ज्यादा शक्तिशाली जीव भी संसार में है, आपकी जो शक्ति है वो भगवान के द्वारा दी हुई है। क्योंकि जो उन्नत भक्त होते हैं, जो वरिष्ठ भक्त होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है उनसे, उनके जो फॉलोवर्स हैं या उनके जो नीचे हैं सेवा में हैं, उनके बार बार फॉल्स ईगो को काटते रहें जिससे कि वो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े। उनको बताएं कि तुम में क्या कमी है। इसलिए भक्तों के संग में रहना, वरिष्ठ भक्तों के संग में रहना बहुत लाभकर है। हर दो मिनट में गाली पड़ेगी वो ठीक हो जाएंगे। हमें याद है जब हम राधा पारसारथी मंदिर में होते थे तो हर दिन अगर कुछ किसी भी प्रोग्राम में थोड़ा भी लेट होता था तो फिर हमारे को मोहन बाबू घड़ी देखते हुए नजर आते थे और फिर हमारी क्लास लगाते थे। तो ये वैष्णव के संग में रहने का लाभ है। तो अभी जब उन्होंने उठाने का प्रयास किया तब उनको क्लियर हुआ कि भैया गलत जगह पंगा ले लिया है। फिर उन्होंने पूछा कि आप इतने शक्तिशाली कौन हैं? बोले हम तो आपके ज्येष्ठ भ्राता हैं। बोले हमारे ज्येष्ठ भ्राता तो युधिष्ठिर महाराज हैं। बोले वो हैं, पर तुम भी पवन के पुत्र हो और मैं भी पवन पुत्र के रूप में आया हूं और इसलिए मैं तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता हूं। और दोनों का इस प्रकार से मिलन हुआ और तब हनुमान जी ने अपना विराट रूप उनको दिखाया। हनुमान जी का भी विराट रूप है, अपना उस रूप को दिखाया और उनको वरदान दिया कि जब महाभारत के युद्ध में तुम भाग लोगे तो तुम्हारी क्या नाम है, तुम्हारी ध्वजा नहीं अर्जुन की, क्योंकि उसको स्वयं भगवान चला रहे होंगे रथ को, इसलिए उनकी ध्वजा में मैं विराजूंगा। तो अर्जुन जी की जो ध्वजा है उस पर हनुमान जी हैं। और साथ में वो क्या बोले कि जब तुम गर्जना करोगे, चिल्लाते हैं ना युद्ध में करके, तो जब चिल्लाओगे तुम, हनुमान जी बोले तुम्हारी आवाज में मैं अपनी आवाज मिला दूंगा। तो क्या होता था, क्योंकि हनुमान जी अपनी आवाज मिला देते थे भीम की आवाज में, तो कई सारे सैनिक ना बेहोश हो जाते थे। जब गुस्से में भीम चिल्लाते थे कई सैनिक बेहोश हो जाते थे, घोड़े तिल मिला के बिदक जाते थे, उल्टी पुल्टी दिशाओं में भाग जाते थे, हाथी डर जाते थे। तो हनुमान जी इस प्रकार से जो है सहायता कर रहे थे उनकी। अब यही स्थान है जहां पे हनुमान जी हमेशा रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कीर्तन भगवान नाम, क्योंकि उनका भगवान से विशेष प्रेम है। तो एक बार क्या हुआ, गरुड़ जी को जो है, और जो चक्र है भगवान के, चक्र भी भगवान के मूर्तिमान रूप में है, उनके मन में थोड़ी भावना आई, उनको चक्र को लगा कि वो किसी को भी परास्त कर सकते हैं। चक्र भगवान का बड़ा शक्तिशाली है, किसी को भी काट पीट के निकल जाएगा। और दूसरी तरफ गरुड़ जी, उनको पता है कि भगवान की सेवा के लिए क्षण भी नहीं बीतेंगे, मैं यहां से वहां घूम जाऊंगा। एक बार गरुड़ जी ने क्या किया कि जगन्नाथ जी के मंदिर में यमराज जी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने जा रहे थे और इत्तेफाक से गरुड़ जी भी वहीं जा रहे थे, तो वहां एक चिड़िया बैठी थी कोने पे। यमराज जी उस चिड़िया को ऐसे देखने लगे, बड़े ध्यान से देखने लग गए। गरुड़ जी समझ गए कि भैया इसकी तो आ गई, यमराज जी किसी को ध्यान से देखे तो क्या होगा मतलब, और वो चिड़िया भी डर गई। तो गरुड़ जी ने बोला चिंता मत करो। गरुड़ जी ने उसको बिठाया अपने पीठ पे, क्षण भी नहीं लगे, एक मिनट भी नहीं लगा, उसको मानसरोवर, मतलब जितनी ऊपर आप आए हो ना इससे डबल, इससे भी ऊपर नेपाल में पड़ता वो स्थान, वहां जाके जगन्नाथ पूरी उड़ीसा से नेपाल में वहां जाके छोड़िया है और एक पेड़ के ऊपर जाके बिठा दिया। तो वहां से आए यमराज जी वापस, उसी समय वापस आ गए दो मिनट में। तो यमराज जी जब दर्शन करके बाहर निकले तो देखने लगे कहां गई। गरुड़ जी बोले महाराज क्या हुआ, एक छोटी सी चिड़िया अगर नहीं मरी आपसे तो आपको टेंशन हो गई, क्या सोच रहे हो। यमराज जी बोले मेरे को इस बात की चिंता नहीं है कि वो मरी या नहीं मरी, मैं तो ये बात सोच के हैरान था कि दो मिनट के अंदर इसकी मृत्यु होनी थी, और मृत्यु होनी थी इसकी मानसरोवर पे, एक पेड़ था उसके ऊपर, ये यहां क्या कर रही है और कैसे पहुंचेगी वहां पे। और गरुड़ जी ने तो सेवा कर दी यमराज जी की जिसकी मृत्यु जब आनी है हाँ आएगी आएगी। तो गरुड़ जी इतने शक्तिशाली इतने फास्ट, तो उनको थोड़ा अभिमान हो गया। तो भगवान ने एक दिन क्या कहा, गरुड़ जी को बोला जाओ गंधमाधन पर्वत पे जाओ, हनुमान जी वहां बैठ के नाम संकीर्तन में मस्त है, उनको जरा बोलो कि द्वारकाधीश कृष्ण आपको आपको याद कर रहे हैं, बुला लो उनको। आए, उन्होंने बोला द्वारकाधीश कृष्ण आपको बुला रहे हैं। कह रहे ठीक है जाओ। आए नहीं हनुमान जी, राम जी बोले क्या नाम है, कृष्णा बोले क्या हुआ लाए नहीं उनको तुम। बोले कि मैंने उनको बोला वो सुनी नहीं रहे, कह रहे द्वारकाधीश कृष्ण बुला रहे हैं कौन है। तो ठीक है, फिर कृष्ण ने बोला कि जाओ उनको बोलो कि श्री राम जी आए हुए हैं द्वारका में, आपको बुला रहे हैं। तो जैसे यहां पर आए गरुड़ जी दोबारा आ गए, तो बोले राम जी आपको बुला रहे हैं। तो हनुमान जी बोले ठीक है पहुंचता हूं। कहता बैठ जाओ मेरी पीठ पे, सोचे कि मैं बिठा के ले जाऊंगा इनको फटाफट। बोला नहीं आप चलो मैं पहुंच रहा हूँ, राम जी बुला रहे हैं ना। बोला हाँ राम जी, पक्का राम जी बुला रहे हैं। बोला अभी पहुंच रहा हूं मैं। अब गरुड़ जी सोचे कैसा भोंदू आदमी है, बैठा बैठ के नहीं चल रहा मेरे साथ। गरुड़ जी पहुंचते उससे पहले वो द्वारका पहुंच गए हनुमान जी, और द्वारका के गेट पे चक्र जो है ना वो सुरक्षा के लिए तैनात रहता है, तो वो चेक करने के लिए आया कौन है। हनुमान जी ने चक्र पकड़ के मुंह में डाला, अंदर चले गए बोला कि भैया पहले अभी मैं राम जी से मिलूंगा, ये सारी चीजें बाद में देखेंगे हम। और फिर जब वो अंदर गए राम जी के पास, तो उनके साथ बैठी थी रुक्मिणी सत्यभामा, सत्यभामा बैठी थी, और जाके बोले हनुमान जी हे प्रभु, और भगवान ने भी अपना रूप बदल लिया फटाफट, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, हे प्रभु आपकी सौंदर्य और आभा तो लगभग अभी तक वैसी ही दिख रही है, पर ये माता को क्या हो गया? तो हनुमान जी की ये निष्ठा जहां पे है, एक तो भगवान भी देखो अपने भक्तों इन्हीं के माध्यम से कईयों के अहंकार तोड़ते रहते हैं, और इतने शक्तिशाली हैं, इन्होंने क्या किया, युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताही मधुर फल जानू, मधुर फल समझ के इतना बड़ा सूर्य, ये देखो सबकी क्या हालत हो रही है, कपड़े डाल के इनको ढक के सब चश्मे लगा के पता नहीं क्या क्या करके बैठना पड़ता हमें, और ये जाके महात्मा जी जब बच्चे थे उठा के सूरज के मुंह में डाल दिए, सोचो क्या पावरफुल पर्सनैलिटी है। और अगर कोई और होता इनकी जगह पे तो उनके लिए कोई मृत्यु, उनकी मृत्यु की जाती, उनको मार दिया जाता भगवान के द्वारा, पर इनको सूरज को मुंह में लेने के बाद और वरदान मिले, और वरदान मिले, क्योंकि अगर भगवान के भक्त अगर कभी कुछ गलती भी कर देते हैं तो भगवान उसमें सद्गुण ढूंढ लेते हैं और उससे भी उसके ऊपर कृपा कर देते हैं, इसलिए भक्त बने रहने में लाभ है। अब यहां पर हनुमान जी जैसे हमने देखा कि कृष्ण के कहने पे नहीं गए, राम जी के कहने पे गए, तो यहां पर एक शिक्षा और देते हैं हनुमान जी हमारे को, जिसको नरोत्तम दास ठाकुर जो कि महाभागवत है, परम रसिक गोड़िया वैष्णव है, जो राधा कृष्ण के अलावा दूसरे किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते, वो हनुमान जी का एग्जाम्पल लेते हैं और क्या बताते हैं। हनुमान जी एक जगह बोलते हैं, श्रीनाथ जानकी नाथ चवहेदा परमात्मनि तथापि मम सर्वस्व राम कमल लोचना। अपने इष्ट देव के प्रति प्रीति कैसी होनी चाहिए, हनुमान जी बताते हैं कि मैं जानता हूं ये जो जानकी नाथ हैं मेरे राम जी, और श्रीनाथ मतलब कृष्णा और नारायण, ये सब जो हैं एक परमात्मा के रूप में सबों के हृदय में विराजमान है, सेम है, पर फिर भी सॉरी तथापि मम सर्वस्व राम कमल लोचना, मेरे तो सर्वस्व राम कमल लोचन ही है। तो नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि अगर हमारे को इष्ट में प्रीति करनी है तो हनुमान जी से शिक्षा लेनी चाहिए कि गौड़िया वैष्णवों के यदि इष्ट है राधा कृष्ण तो सर्वस्व एक तरफ हो जाए, हमारे प्रीति तो एक ही की तरफ रहेगी, राधा कृष्ण गौर नित्यानंद। तो हनुमान जी हम सबके एक आदर्श है, और जब हम भगवान से डायरेक्ट प्रार्थना करते हैं भक्ति के लिए तो आसानी से नहीं मिलती, और जब भगवान के भक्तों से प्रार्थना करते हैं तो भगवान भक्तों से जब भक्त लोग अप्रोच लगाते हैं तब हमारे को क्या है जल्दी मिल जाती है। इसलिए हम प्रहलाद महाराज का भी नाम लेते हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, षट गोस्वामी वृंद की पूजा करते हैं, प्रभुपाद जी की पूजा करते हैं, कि इनकी कृपा से, इनकी पूजा करने से हमें कौन मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे। क्या बताते हैं, तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विषय, इनका भजन करने से हम राम को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आज हम श्री हनुमान जी के चरणों में सब प्रार्थना करेंगे कि हे हनुमान जी हमें शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए कि अपने सर्वस्व को, अपनी हर वस्तु को, अपने हर क्षण को, अपने मन को जिस प्रकार से आपने श्री रामचंद्र जी की सेवा में लगाया है, हम भी शिला प्रभुपाद जी के आंदोलन में गुरु चरणों में समर्पण करके अपने मन बुद्धि अहंकार सबको कृष्ण सेवा में लगा सके और निरंतर हरि नाम का उच्चारण कर सके। श्री हरे कृष्ण महामंत्र की, साधु संत की, साधु संघ की, बजरंग बली की, श्री प्रभुपाद की, पिताई गौर प्रेमानंद। तो अभी हम चलेंगे यहां से और आगे रुकेंगे हम करण प्रयाग के आसपास जाकर के हम रुकेंगे, जहां पर हम फिर से प्रसाद इत्यादि लेंगे। सबसे प्रार्थना है अपनी अपनी बसों में जाएंगे और इधर उधर ना जाएं, ठीक है चैतन्य प्रभु।